पृष्ठ संख्या 363, अध्याय 14, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। महान दार्शनिक एवं विद्वान भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार, मनु ने पुरोहित, शिक्षक, योद्धा, व्यापारी एवं श्रमिक के चतुर वर्ण विचारणा को समाज के सभी वर्गों को समान पद, समान मान एवं समान मूल्य देने के विचार से प्रतिपादित किया था, परंतु परिवर्तन की आंधी एवं इतिहास की लहरों ने कर्म पर आधारित चतुर वर्ण की विचारणा को वंशानुगत आधारित यजमानी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया, जो अंततः देश के लिए घोर अभिशाप सिद्ध हुआ। सभी वर्गों में से शूद्रों, जो सामाजिक पदानुक्रम में निम्नतम स्तर पर सभी प्रकार के अभावों का सामना करना पड़ा, इन अपरिश्रम एवं वंचित वर्गों को अनुसूचित जाति, जिस शब्द का प्रयोग भारत सरकार कानून 1935 में सर्वप्रथम हुआ, नामांकित किया गया है। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने कुछेक जातियों, वंशों एवं कबीलों को तत्कालीन असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत एवं विराट, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब एवं संयुक्त प्रदेश के प्रांतों में अनुसूचित जातियों के रूप निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार अनुसूचित जाति आदेश 1936 जारी किया। संविधान की धारा 341 के अधीन कुछ एक पिछड़े वर्गों, समुदायों जो अस्पृश्यता एवं सामाजिक अयोग्यताओं के शिकार थे, को अनुसूचित जाति घोषित किया गया। संविधान के लागू होने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों की सूची संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अंतर्गत विज्ञापित की गई। अब तक विभिन्न राज्यों एवं संघ प्रदेशों के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करते हुए 15 राष्ट्रपति आदेश जारी किए जा चुके हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संसदीय कानून द्वारा होता है। सरकार ने अनुसूचित जाति अथवा जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी है। प्राधिकारियों की इच्छानुसार कोई भी जाति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति बन सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताओं वाला कोई समुदाय के एक राज्य थे। संघ प्रदेश में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति हैं, परंतु दूसरे में नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ एक समाज शास्त्रियों के परामर्श पर विशुद्धतया राजनीतिक कारणों से कुछ एक समुदायों को लाभ प्रदान करने हेतु अनुसूचित कर दिया गया है, जबकि लद्दाखियों, जो कि हिमाचल प्रदेश में अपने पड़ोसियों के पूर्णतया समान हैं, स्वयं को अनुसूचित घोषित कराने के लिए अंततः हिंसा का सहारा लेना पड़ा। 1971 तक भारत में 612 अनुसूचित जातियां थी। पृष्ठ संख्या 364, अनुसूचित जातियों की स्थिति, स्टेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। 1981 की जनगणना अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 15.47% एवं 7.85% क्रमशः अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां हैं। दूसरे शब्दों में हरिजन अर्थात जनजाति देश की जनसंख्या का लगभग 1/4 भाग है। प्रदेशवार इनका प्रतिशत इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश 22.3%, पश्चिम बंगाल 11.46%, बिहार 9.8%, तमिलनाडु 8.48%, आंध्र प्रदेश 7.6%, मध्य प्रदेश 7.02%, राजस्थान 5.57%, केरल 2.43%, हरियाणा 2.35%, गुजरात 2.33%, हिमाचल प्रदेश 1.01%, जम्मू कश्मीर 0.47%, त्रिपुरा 0.30%, सिक्किम 0.02%, मणिपुर 0.02%, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है एवं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली तथा मिजोरम में उनकी संख्या अति अल्प है। हरिजनों की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कुछ समय पूर्व तक हरिजन अपनी बस्ती से बाहर निकलने का साहस नहीं कर सकता था, परंतु देश के कुछ एक भागों में कृषि विकास, विशेषतया हरित क्रांति, कुछ प्रदेशों में औद्योगिक प्रगति, तेजी से बढ़ते हुए नगरीकरण एवं जजमानी प्रणाली के विघटन के कारण हरिजन गतिशील वर्ग बन गए। सभी अनुसूचित जाति श्रमिकों का लगभग 52% कृषिगत श्रमिक हैं तथा 28% लघु एवं सीमांत कृषक हैं एवं फसल सहभागी हैं। देश के पश्चिमी भाग में लगभग सभी बुनकर अनुसूचित जातियों में हैं एवं पूर्वी भाग में सभी मछुआरे अनुसूचित जनजाति में हैं। कुछ गंदा व्यवसाय यथा झाड़ू लगाना, चमड़ा परिशोधन यथा चमड़ी उतारना पूर्णतया अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। नगरीय क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, ठेला चालकों, निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों एवं अन्य असंगठित गैर कृषि श्रमिकों तथा नगरीय सफाई कर्मिकों की पर्याप्त संख्या अनुसूचित जातियों से संबंध रखती है। वे उन निर्धनों में जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं में सबसे निर्धन हैं। यद्यपि जनसंख्या के अन्य वर्गों में भी निर्धन एवं दलित हैं, यद्यपि घोर निर्धनता, असामान्य अज्ञानता एवं गहन अंधविश्वास में डूबी हुई जनसंख्या की अधिक भाग अनुसूचित जातियों में है। वंचित लोगों में भी हरिजन ही शताब्दियों तक दासता, अपमान एवं नितांत व्यवस्था का जीवन व्यतीत करते रहे हैं। संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष तौर पर अथवा नागरिक रूप में उनके अधिकारों को मान्यता देकर उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विकास करने एवं उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने हेतु सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं। मुख्य सुरक्षाएं हैं रोमन का नंबर 1, अस्पृश्यता का उन्मूलन एवं किसी भी प्रकार से इसके अभ्यास पर प्रतिबंध, धारा 17, पृष्ठ संख्या 365। रोमन का नंबर 2, उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की उन्नति एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण के सभी रूपों में उनकी सुरक्षा, धारा 46। रोमन का नंबर 3, सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों एवं श्रेणियों के लिए खोल देना, 25B। रोमन का नंबर 4, दुकानों, जन भोजनालयों, रेस्टोरेंटों एवं सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक विश्राम स्थानों जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से राजकोष में सहायता प्रदान करते हैं अथवा जनप्रयोग के लिए समर्पित कर दिए गए हैं के बारे में किसी अयोग्यता, बाधा अथवा शर्त की समाप्ति, धारा 15-2। रोमन का नंबर 5, अनुसूचित जातियों के हित में सभी नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने, बसने अथवा संपत्ति प्राप्त करने के सामान्य अधिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध, 19-5। रोमन का नंबर 6, राज्य द्वारा चलाए गए अथवा राजकोष से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की इनकारी पर रोक। रोमन का नंबर 7 राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं में उनकी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में सुरक्षित स्थान बनाने की अनुमति देना तथा लोक सेवाओं में नियुक्ति के बारे में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करने के आदेश देना धारा 16 एवं 335। रोमन का नंबर 8 25 जनवरी 2000 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सुरक्षित रखना धारा 330, 332 एवं 334। रोमन का नंबर 9 उनके कल्याण के वर्धन एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु केंद्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति तथा राज्यों में अलग विभागों एवं जनजातीय परामर्श परिषदों की स्थापना धारा 164, 338 एवं 5वीं सूची। रोमन का नंबर 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन हेतु विशेष व्यवस्था धारा 224 एवं 5वीं तथा 6वीं सूचियां। रोमन का नंबर 11 मानव व्यापार एवं बंधुआ श्रम पर प्रतिबंध धारा 23। विधानमंडल में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटर्स धारा 330 एवं 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में उनकी जनसंख्या अनुपात के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। यह सुरक्षा जो संविधान के प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए रखी गई है थी अब सन 2000 तक बढ़ा दी गई है। संघ प्रदेशों में जहां विधानमंडल हैं इसी क्रम के आरक्षण की संसदीय कानूनों द्वारा व्यवस्था की गई है। राज्यसभा तथा विधान परिषदों में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। संलग्न सूची विधानसभा एवं लोकसभा में उनके प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। पंचायती राज्य की व्यवस्था में ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए स्थान सुरक्षित दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 366 सेवाओं में आरक्षण रिजर्वेशन इन सर्विस संविधान की धारा 335 में व्यवस्था दी गई है कि केंद्रीय अथवा राज्य विषयों में संबंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्त करते समय प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखा जाएगा धारा 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों जिनका सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई है। इन व्यवस्थाओं के अनुसरण में सरकार ने अपने अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण जिनके लिए अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती की जाती है तथा रिक्त स्थानों के 16:2:3 प्रतिशत के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता में भिन्न अन्य आधार पर की जाती है। अनुसूचित जनजातियों के लिए दोनों मामलों में आरक्षण 7.5% है। वर्ग सी एवं डी के पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण जिनमें सामान्यतः एक ही स्थान अथवा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रार्थी होते हैं संबंधित राज्यों एवं संघ प्रदेशों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में रखा जाता है।